नमस्कार, गुड इवनिंग। शुभ संध्या घड़ी में रात के 8:30 हुए और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हो गए। आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर मैं हूं धर्मेंद्र, और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राहुल बनर्जी। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत।
धन्यवाद धर्मेंद्र।
आज जब आ रहे थे आप स्टूडियो, गर्मी कितनी थी बाहर?
बिल्कुल उल्टी जितनी आईपीएल में अब दिख रही है।
जी, और आईपीएल ही नहीं, अब पेरिस ओलंपिक के लिए भी गर्मी बढ़ती चली जा रही है और तापमान बहुत ऊंचा हो चला है। अगर हम बात करें तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है, यानी पेरिस ओलंपिक से ठीक पहले अपनी जो है जोरदार चुनौती पेश कर दी है।
खास करके जब आप देखें उनके वर्ल्ड सीरीज में और थॉमस कप में उनका जो प्रदर्शन था उतना अच्छा नहीं था, तो जरूरी था उनकी तरफ से कि अब अपनी जो बिल्डअप जो है पेरिस के लिए वो ठीक से सही रास्ते पे निकालें।
जी,
और जो लग रहा है जिस तरह जीता उन्होंने, स्ट्रेट सेट्स में जीता मेरे ख्याल से चाइना के जो जोड़ी को हराया, तो ये अच्छी, और आगे मेरे ख्याल से एक दो इवेंट और हैं, तो जितना ये अपनी जो भी है टैक्टिक्स वगैरह प्लानिंग स्ट्रेटेजी जितना फाइन ट्यून कर सकते हैं पेरिस पहुंचने से पहले उतना बेटर है।
राहुल, हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर भी और तमाम दूसरी खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुर्खियों पर अभी एक नजर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीता। जापान में विश्व पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने आज तीसरे दिन दो पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराया, और शारजाह मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अरविंद चिदम्बरम ने 5वें दौर में यूएई के एआर साले सलीम को पराजित किया। बैंकॉक में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने चीन के चेन बोयांग और लियू यी को हराया। सुनते हैं रिपोर्ट आकर्षिता से।
भारत की स्टार जोड़ी ने 21-15 की इस जीत के दौरान विरोधी को पूरे मुकाबले में कभी टिकने का मौका ही नहीं दिया। भारतीय जोड़ी के शानदार फॉर्म का चीन की जोड़ी के पास कोई जवाब ही नहीं था। सात्विक और चिराग ने शुरुआत में ही 5-1 की बढ़त बना ली। इसके बाद चेन और लियू ने लगातार 4 अंक लेकर वापसी की और 10-7 से बढ़त बना ली, लेकिन चिराग ने तूफानी रिटर्न के जरिए स्कोर 10-10 कर लिया। ब्रेक के बाद सात्विक और चिराग ने 14-11 की बढ़त बनाई। ये बढ़त जल्दी ही 16-12 की हो गई। चीनी जोड़ी ने 3 अंक बनाए, लेकिन इसके बाद भारतीय जोड़ी ने लगातार 5 अंक लेकर गेम जीत लिया। दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने 8-3 के साथ शुरुआत की और ब्रेक तक 5 अंक की बढ़त बनाए रखी। चेन और लियू ने 3 अंक लगातार बनाए, लेकिन सात्विक ने उनकी लय तोड़ी। जब स्कोर 15-11 था तब सात्विक को खेल में विलंब करने पर चेतावनी मिली और चिराग ने 2 अंक गंवाए, जिससे चीनी जोड़ी ने 15-14 की बढ़त बना ली। भारतीय जोड़ी ने हालांकि इसके बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्हें फिर कोई मौका नहीं दिया। एशियाई खेलों की चैंपियन जोड़ी का ये सीजन का दूसरा और करियर का 9वां BWUF विश्व टूर खिताब है। उन्होंने मार्च में फ्रेंच ओपन सुपर 750 खिताब जीता था। दोनों मलेशिया सुपर 1000 और इंडिया सुपर 750 में उप विजेता रहे थे। सात्विक और चिराग ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में दूसरे दौर में हार गए थे। इसके बाद सात्विक की चोट के कारण एशियाई चैंपियनशिप नहीं खेल सके। थॉमस कप में भी वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। भारतीय जोड़ी ने इस जीत के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता किया है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
तो जैसा आकर्षिता ने बताया, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पराजय का सामना, और उसके बाद अगर बात करें तो थाईलैंड में जो है इन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन एशियाई चैंपियनशिप में भी ये नहीं खेल सके थे, और अब एक मौका था इनके पास कि जो लय थोड़ी सी बिगड़ रही ओलंपिक से पहले उसको फिर से पटरी पर लाया जाए। उन्होंने उसमें बड़ी अच्छी तरह से उस काम को किया और चीन की जोड़ी को खासतौर पर पराजित किया है।
और देखने के ये भी ये जरूरी है कि इसके पहले दो मैच थे जो सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल जो जीता उन्होंने, वो खासकर क्वार्टर फाइनल जो ताइपे की जो जोड़ी थी उनके साथ काफी कड़ा संघर्ष था
जी।
और ऐसे अब ये ऐसे अपने आप को धक्का मारना, जहां की जब आप मुश्किल का सामना कर रहे हो और किस तरह आप उसको टैकल कर सकते हो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जैसे आपने कहा और जैसे हमने आकर्षिता का रिपोर्ट में सुना, जितना करीब हम आएंगे ओलंपिक्स के उतना ही आपका प्रिपरेशन जो है आज, अब तो काफी ये हो गया कि ये पीक किस टाइम करना है। पहले जीतो जल्दी सीजन में 3-4 टाइटल जीतो, और जब तक आप ओलंपिक में पहुंचो आपका अगर आपका डाउन शुरू हो जाता है वो भी गलत है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही टाइम पे अपनी लय जो है ऊपर की तरफ ले रहे हैं, और ये भी जरूरी है कि ओलंपिक शुरू होने से पहले पेरिस थोड़ा जल्दी पहुंचे, वहां की जो वहां का जो जिस तरह किस माहौल में खेलेंगे, हाँ जी हॉल के मेरे ख्याल से कुछ तैयारी ऐसी हो रही है। आजकल तो काफी सपोर्ट मिल रहा है एथलीट्स को सरकार की तरफ से और फंडिंग भी बहुत अच्छी आई हुई है
जी।
तो उस तरह से मैंने जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कुछ कोशिश करी है कि पेरिस का जो हॉल है उसको रिक्रिएट करना यहां पे, सिर्फ बैडमिंटन में आर्चरी में भी मेरे ख्याल से कर रहे हैं वैसे ही, और दो तीन ऐसे जो खेल है तो ये चीजें जो है जो पहले नहीं हुआ करती थी आज बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे और खास करके जब आप एक पदक के उम्मीदवार हो, एक टाइम में हमारी टीमें जाती थी ठीक है पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन आज के दिन भारत की जो टीमें जाती हैं दे आर एक्सपेक्टेड ऑल्सो टू विन मेडल्स। सो इन दैट सेंस ये जो तैयारियां करें बहुत अच्छी है
जी। और आपने बात की तैयारियों की, पीवी सिंधु के फॉर्म की बात करें तो उतना अच्छा दिखाई नहीं दिया है, और आपने बात की कि शायद वो ताकत खिलाड़ी ओलंपिक से पहले नहीं लगाते, वो सारी ताकत को बचा के रखते हैं ताकि जो वो उनका पीक है वो पहले ही ना आ जाए, जब मेन इवेंट हो वहां पर वो पीक को हासिल करें। आपको लगता है कि पीवी सिंधु भी उसी स्ट्रेटजी पे काम कर रही हैं?
एक्चुअली सिंधु का कुछ लास्ट ईयर जिस तरह से उनका फॉर्म एकदम से गिर गया
जी,
बहुत फॉल हुआ था ओवर कप के बाद, जिस तरह उन्होंने खेला उसके बाद रिजल्ट्स आने बंद हो गए, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में हारती हुई, उन्होंने अभी कोच बदली किया है वापस प्रकाश के पास, प्रकाश पाडुकोणे के पास चली गई हैं, तो ये सब इसका टाइम लगेगा इसमें। अब वक्त है उनके पास, इतना एक जो है डाउनफॉल जो उनका चल रहा था उसको रिवर्स करके वापस अपने फॉर्म में आना, ओलंपिक दो बार पदक जीत चुकी हैं तो अनुभव का तो की कोई कमी नहीं है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है, शी इज अ वंडरफुल प्लेयर। लेकिन कभी कभी एथलीट के स्पोर्ट्स पर्सन के करियर में ऐसा टाइम आता है कि या तो आप कंप्लीटली आप अपना अप्रोच रीअसेस करो, या क्योंकि इसका जवाब तो उन्हीं को निकालना पड़ेगा, हम लोग यहां बैठ के एज बाहर से एक्सपर्ट्स या वॉचर या फैन हम लोग तो उससे ज्यादा नहीं बोल सकते।
चलिए तो बैडमिंटन में आप इस बार क्या पदक की कितनी उम्मीदें कर रहे हैं?
मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन तो ये लड़कों के मेन डबल्स में है
जी,
वर्ल्ड रैंकिंग में मेरे ख्याल अब तो आगे पीछे चल रहा है, लेकिन देर दो नंबर में पहुंच गए मेरे ख्याल से इस जीत के साथ, तीन नंबर पे थे इसके पहले
जी।
तो वैसे भी वो उतना भी मैटर नहीं कर रहा, इनकी जो तैयारियां हैं, इनका जो तालमेल है, इनकी फिटनेस, ये सब अगर सही लाइन पे चल रहे हैं तो वो जितना बेटर होता है वो उतना भारत के लिए बेटर होगा।
एक और अच्छी खबर है, सुकांत कदम, तरुण और सुहास ने पेरिस में आगामी पैरालंपिक खेलों के लिए बैडमिंटन स्पर्धा में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये सभी पुरुषों की SL4 श्रेणी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में होंगे। ओलंपियन निशानेबाज मनु भाकर राइफल और पिस्टल ओलंपिक चयन ट्रायल OST में सबसे सफल निशानेबाज रहीं। उन्होंने आज भोपाल में अंतिम दिन महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल मैच में जीत हासिल की। मनु की दो स्पर्धाओं के ट्रायल में यह चौथी जीत रही। उन्होंने महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल के ट्रायल भी जीते। पलक दूसरे और रिदम सांगवान ने तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले इला वेनिल वलारीवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीत दर्ज की। रमिता ने दूसरा और मेहलुई घोष ने तीसरा स्थान हासिल किया। दिव्यांश पवार ने पुरुषों की एयर राइफल में जीत दर्ज की। अर्जुन बबूता दूसरे और रुद्रांश पाटिल तीसरे स्थान पर रहे। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में रविन्दर सिंह विजेता रहे। वरुण तोमर दूसरे और सरबजोत सिंह तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ पेरिस ओलंपिक के लिए टीम चुनने के लिए दिल्ली और भोपाल में पिस्टल और राइफल में 4 ट्रायल्स की सीरीज आयोजित कर रहा है। भारतीय निशानेबाज अब म्यूनिख में 31 मई से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जो पदक की उम्मीद है हमारी, जैसा आपने कहा बैडमिंटन में उम्मीद है, कुश्ती में हमेशा उम्मीद रहती है, एक शूटिंग भी ऐसा इवेंट है जिसमें हमारी काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, हालांकि बहुत बार ये उम्मीदें पूरी नहीं भी हुई हैं, लेकिन इस बार आप कितनी बेहतर उम्मीदें देख रहे हैं?
ये तैयारियां तो हर बार अच्छी होती हैं
जी।
टोक्यो से पहले भी हमारी जो टीम गई थी, रियो से पहले भी जो हमारी टीमें गई थी, इतनी उनके पहले वर्ल्ड कप जीते हुए आ रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन जब वक्त आता है डिलीवर करने का ओलंपिक गेम, जहां दबाव बहुत ही अलग किस्म का होता है और कांटे का टक्कर होता है, तो उसमें ऑन द डे एट द मोमेंट आप किस तरह अपना मनोबल सही रखते हैं, आपकी फोकस बनाए रखते हैं, तो तैयारियां तो अच्छी हो रही हैं, स्कोर्स अच्छी बन रही हैं, डिलीवरी उस दिन कैसे होगा ये तो
देखना
उस दिन ही देखना पड़ेगा।
जापान के कोब में विश्व पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज निषाद कुमार ने हाई जंप में रजत पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले निषाद ने 1.99 मीटर की ऊंची छलांग लगाकर पुरुषों के T47 वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। इस तरह उन्होंने प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत के लिए पहला पदक जीतकर खाता खोला। अमरीका के रॉड्रिक टॉमसेंड ने 2.05 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। स्पर्धा में एक अन्य भारतीय रामपाल 1.90 मीटर के सत्र के अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन के बाद भी छठे स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 की 200 मीटर दौड़ में 30.49 सेकंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत का यह दूसरा पदक है। दीप्ति जीवांजी ने महिलाओं की T20 वर्ग के 400 मीटर की दौड़ के फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने अपनी हीट में 56.18 सेकंड का समय लिया, जो एशियाई रिकॉर्ड है। पदक तालिका में तीसरे दिन चीन 10 स्वर्ण 8 रजत और 8 कांस्य पदक लेकर पहले स्थान पर है। भारत अभी 29वें नंबर पर है। प्रतियोगिता 25 मई तक चलेगी। और अब बात क्रिकेट की। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट सुनते हैं।
पंजाब किंग्स के लिए इस मैच का कोई खास महत्व नहीं था क्योंकि वे पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी। फिर भी टॉस जीतने के बाद उसके बल्लेबाजों ने पूरा दम दिखाया। प्रभसिमरन सिंह की 71 रन की धुआंधार पारी की बदौलत उसने 5 विकेट पर 214 रन बनाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर मेजबान टीम के लिए बड़ा साबित होगा, लेकिन बल्लेबाजों की मददगार पिच पर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भी जमकर हाथ दिखाए। पहला विकेट शून्य के स्कोर पर गिरा। इसके बाद युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जमकर हाथ दिखाए और 28 गेंदों में 66 रन की धमाकेदार पारी खेलकर पंजाब को बैकफुट पर धकेल दिया। राहुल त्रिपाठी, नीतीश रेड्डी और हेनरिक क्लासिन ने भी तेज तरार पारियां खेलकर पंजाब के स्कोर को बौना साबित किया। हैदराबाद ने मुकाबला 5 गेंद शेष रहते जीत लिया। इस जीत से हैदराबाद ने प्लेऑफ में दूसरे नंबर पर रहते हुए पहुंचने की अपनी संभावना बेहतर कर ली है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच में अगर केकेआर जीत जाता है या फिर मैच में बारिश की वजह से अंक बढ़ जाता है तो उसका फायदा हैदराबाद को मिलेगा। बारिश से मैच रद्द होने की स्थिति में राजस्थान को 1 अंक मिलेगा और 17 अंकों पर पहुंच जाएगा। हैदराबाद के भी 17 अंक हैं, लेकिन रन रेट में वह राजस्थान से बेहतर स्थिति में है। स्पर्श सक्सेना, स्पोर्ट्स कैन।
तो आईपीएल का यही रोमांच है, यही जो तापमान की हम बात कर रहे थे कि अगर अंक बट जाता है या फिर 2 अंक किसी टीम को मिल जाता है तो सारी स्थिति अभी भी बदल सकती है, जबकि अब अंतिम स्टेज में लीग चरण के मुकाबले चल रहे हैं।
कल जो मैच हुआ
जी
आरसीबी और चेन्नई का, वो लास्ट डिसाइसिव मैच था, क्योंकि अभी जो 3 टीमें उनके आगे हैं
जी,
बेंगलोर तो खैर पहुंच गई है 4th नंबर पे, करीबन करीबन उनका पोजीशन फिक्स है। राजस्थान और कोलकाता का टक्कर आज होना था या होना है अगर बारिश बंद हो
जी
गुवाहाटी में।
इसमें पहले और चौथे नंबर पे तो टीमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दूसरे और तीसरे नंबर में अभी भी गुंजाइश बनी हुई।
अगर राजस्थान जीती, जो मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसके पहले वो 4 मैच लगातार हार चुके हैं, कोलकाता बहुत ही स्ट्रांग फॉर्म में है
जी,
तो फिर अगर उनको 2 अंक मिले फिर वो गारंटी करेंगे अपने आप को कि दूसरे स्थान पर। अगर लेकिन बंटवारा हुआ पॉइंट का, जैसे हमने सुना रिपोर्ट
जी,
तो हैदराबाद आगे रह जाएगी। और ये देखें तो राजस्थान के साथ एक काफी लंबी दिन से वीकनेस रही है। पिछले साल भी शुरुआत एकदम अच्छी करी, जैसे उन्होंने जयपुर पहुंच वो उनका हारना शुरू हुआ, 7 मैच लगातार हार गए। यहां भी इतना अच्छा चल रहे थे, फिर एकदम से आखिर के जो 4 मैच हैं वो लगातार हार के आए हैं, तो उसको रिवर्स करना, वो भी ऐसे सबसे स्ट्रांग साइड में लीग जो अभी चल रही है
जी,
तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो और अगर वो पीछे रह जाएं और बेंगलोर जैसे अभी अपकमिंग टीम है जिन्होंने 5 मैच लगातार जीती हैं
जी,
तो उन्होंने अपने ये स्थिति अपने लिए उन्होंने खुद बनाई है।
राहुल, चलते चलते एक टिप्पणी आपकी जरूर चाहूंगा। कल चेन्नई की टीम हारी और बहुतों का दिल टूटा क्योंकि धोनी का हो सकता है ये आखिरी मैच होगा। आपको भी क्या थोड़ी निराशा हुई चेन्नई की हार से?
या मैं तो बहुत सालों चेन्नई में पढ़ा हूं, तो मैं थोड़ा सा मेरा तो वहां लगता है, दिल तो वहां लगता है ही
जी,
तो हां जरूर लगा है। लेकिन एट द सेम टाइम डिफेंडिंग चैंपियन जब बाहर हो जाती है तो एक अलग से मजा भी आता है कि हाँ ठीक है, कोई दूसरी टीम आ रही है, दूसरी टीमों को मौका भी मिलना चाहिए मुंबई और चेन्नई के अलावा।
और चलते चलते एक खबर, शारजा मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने 5वें दौर में संयुक्त अरब अमीरात के AR साले सलेम पर जीत दर्ज की। अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। राहुल, स्टूडियो आने के लिए हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।